समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आप सभी का आकाशवाणी के गोल्ड चैनल पर कार्यक्रम आज सवेरे में। समय है 7:30 और 28 मार्च 2024 में बृहस्पतिवार की इस नई सुबह में अब तक के प्रमुख समाचार और बहुत सी रोचक जानकारी लेकर हम एक बार फिर से हाजिर हैं। आगाज करते हैं इस कार्यक्रम का और आज सवेरे के इस अंक में मैं हूं निखिल कुमार और मेरे साथ में है सायरा मुजतबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार निखिल, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हू हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे वेयर वी ब्रिंग द लेटेस्ट हेडलाइंस। वी विल ऑल्सो गिव यू an update from your very own city in our Metro News section. Uske alawa, of course, it's a new day, it's a new start, it's alive with the beating of young hearts. That's what Bryan Adams said in his famous song. So let's start with the news.
जी हाँ, लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना आज जारी की जाएगी। इस चरण में 12 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 89 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होगा। दूसरे चरण में केरल की 20, कर्नाटक की 14, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8, मध्य प्रदेश की 7, असम और बिहार की 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3, मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर चुनाव होगा। उम्मीदवार 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल कर सके और मतदान 26 अप्रैल को होगा।
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे स्ट्रेस्ड दैट सेल्फ रिलायंस इज अ स्ट्रेटेजिक इम्पेरेटिव फॉर द फ्यूचर। ही स्ट्रेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्री टू बी एबल टू सोर्स द रिक्वायरमेंट फॉर सस्टेनेंस इन टर्म्स ऑफ एम्यूनिशन। स्पीकिंग एट अ समिट ऑर्गेनाइज बाय अ प्राइवेट न्यूज चैनल यस्टरडे, जनरल पांडे सेड एडिक्वेट एम्फेसिस इज बीइंग लेड ऑन डेवलपिंग ओन केपेबिलिटीज इन द डिफेंस सेक्टर। Responding to a question, the Army Chief said India is prepared in every manner and levels of operational preparedness is of a very high order. He said India has its response mechanism firmly in place. India is maintaining a close watch on the developments across the border, he added.
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए पार्टी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। हरियाणा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ को दिल्ली का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि पार्टी सांसद डॉ दिनेश शर्मा महाराष्ट्र के प्रभारी होंगे और विधायक अभय पाटिल को तेलंगाना का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी विधायक संजीव चौरसिया और पार्टी के नेता रमेश विधोड़ी और संजय भाटिया को उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के विधायक नितिन नवीन छत्तीसगढ़ के प्रभारी होंगे। पार्टी नेता नलिन कोहली को नागालैंड का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जबकि कैप्टन अभिमन्यु को असम का प्रभारी बनाया गया है। इस बीच कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 14 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में डॉली शर्मा को गाजियाबाद लोकसभा सीट से और नकुल दुबे को सीतापुर सीट से उम्मीदवार बनाया है। झारखंड में खूंटी लोकसभा सीट से कालीचरण मुंडा कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। मध्य प्रदेश में प्रताप भानु शर्मा को विदिशा से और राव यदुवेन्द्र सिंह को गुना संसदीय क्षेत्र से खड़ा किया गया है।
And Nikhil, we all know that Ukrainian Foreign Minister is visiting New Delhi today. So yes, the Ukraine Foreign Minister, Dmytro Kuleba, will be arriving in New Delhi today for a 2-day official visit to India at the invitation of the External Affairs Minister, Dr. S. Jayashankar. During his visit, Mr. Kuleba will have several engagements, including official meetings with the External Affairs Minister and Deputy National Security Advisor. The External Affairs Ministry said in a statement that both ministers will discuss matters about bilateral partnership and cooperation on regional and global issues of mutual interest. The Ukrainian Foreign Minister is also expected to interact with the business community.
भारत ने मार्च में सबसे अधिक विदेशी फंड आकर्षित करके बाकी एशियाई बाजारों को पछाड़ दिया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने दिसंबर 2023 के बाद से सबसे बड़ी खरीदारी में भारतीय इक्विटी में 3 अरब 63 करोड़ डॉलर का निवेश किया। घरेलू संस्थानों ने 52,467 करोड़ रूपये का निवेश किया, जो पिछले 4 वर्षो में सबसे अधिक है। निर्वाचन आयोग ने कथित आपत्तिजनक बयान के लिए भाजपा नेता दिलीप घोष और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। श्री घोष को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत को लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत पर की गई टिप्पणी के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने कहा कि उनके बयान अभद्र थे और प्रथम दृष्टया इनसे चुनाव आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। आयोग ने दोनों नेताओं से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस ने दिलीप घोष के खिलाफ और भाजपा ने कांग्रेस नेता के बयान पर निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से राजधानी कुआलालंपुर में मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री इब्राहिम की दूरगामी सोच दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने और महत्वाकांक्षी एजेंडा तैयार करने की दिशा में मदद करेगी। श्री जयशंकर ने कहा कि क्षेत्र विकास को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण से उन्हें बहुत लाभ हुआ है।
In IPL, Sunrisers Hyderabad defeated Mumbai Indians by 31 runs in a high-scoring match at the Rajiv Gandhi International Stadium in Hyderabad last night. Put into bat first, Hyderabad created history by posting a huge total of 277 for 3 in the stipulated 20 overs. For Hyderabad, Heinrich Klaassen scored 80 runs from just 34 balls. While chasing the massive target of 278, Mumbai Indians only managed to score 246 runs in 20 overs. And today, Rajasthan Royals will take on Delhi Capitals at the Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. In Miami Open Tennis, top-seeded India's Rohan Bopanna and his Australian companion Matthew Ebden will face the pair of Marcela Granollers of Spain and Horacio Zeballos of Argentina, seeded fourth, in the men's doubles semi-final today. The match is scheduled to begin at 10:30 p.m. Indian time. The victory ensures Bopanna's position in the ATP Top 10 doubles ranking and guarantees a direct qualification for the Paris Olympics.
और अब एक खबर चुनाव के लिए। पत्र सूचना ब्यूरो पीआईबी ने लोकसभा चुनाव की कवरेज को करने वाले मीडियाकर्मियों के लिए एक विशेष वेबसाइट pib.gov.in-electric2024-index.aspx की शुरुआत की है। इस वेबसाइट पर डिजिटल फ्लिप बुक जैसी विशेषताएं हैं जिनमें कई तरह के विश्लेषण और आंकड़ों से संबंधित लेख शामिल किए गए हैं। मीडियाकर्मी चुनाव से संबंधित लेख लिखने के लिए इस वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही इस पर अनेक उपयोगी लिंक भी दिए गए हैं जिनके माध्यम से पत्रकार निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर संबंधित जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और अधिसूचना से संबंधित जानकारी भी इस वेबसाइट पर समय समय पर अपडेट की जाती रहेगी। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। और अब समय है प्रमुख महानगरों से जुड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने का, यानी चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की खबरों को जानने का। तो सायरा, शुरुआत करते हैं फिलहाल हम दिल्ली से। दिल्ली जल बोर्ड के द्वारका स्थित जल शोधन संयंत्र में होने वाले मरम्मत कार्य की वजह से आज संबंधित क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कम दबाव पर उपलब्ध रहेगी। जल बोर्ड के अनुसार आज सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक पानी की आपूर्ति कम दबाव पर मिलेगी। जल बोर्ड ने इन क्षेत्र के निवासियों को सलाह दी है कि वे आवश्यकता के पानी भरकर रख लें और जरूरत पड़ने पर नजदीकी केंद्रों या फिर केंद्रीय कक्ष से संपर्क करके पानी के टैंकर मंगा सकते हैं।
इफ यू टॉक अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन चेन्नई, निखिल, वेल, द कस्टम्स ऑफिशियल्स एट द चेन्नई एयरपोर्ट सीज्ड 4 कॉकटूज, व्हिच इज एन एग्जॉटिक स्पीशीज फ्रॉम 2 पैसेंजर्स फ्रॉम मलेशिया। द बर्ड्स वर कंसील्ड इन प्लास्टिक केजेस विद होल्स फॉर वेंटिलेशन एंड वर स्मगल्ड फ्रॉम मलेशिया फॉर इलीगल पेट ट्रेड इन द सिटी। Customs officers intercepted the 2 passengers on suspicion. Wildlife Bureau officials rushed to the spot and certified that the birds were healthy and they will be deported to Malaysia. Trade of the species is banned. The import of the birds needs a license from the Director General of Foreign Trade and also a quarantine clearance certificate to declare that the species are healthy. Another news from Chennai, Dr. Agarwal's Eye Hospital in Chennai will host a glaucoma patient summit to raise awareness and encourage timely medical attention for glaucoma on 29th of March. Glaucoma can cause vision loss and blindness by damaging the optic nerve. The basic glaucoma checkup will be conducted free of cost. The test will include NCT and fundus picture screening.
और एक बार फिर दिल्ली की ओर चलते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए स्नातक, स्नातकोत्तर और बीएड की प्रवेश परीक्षाओं की तिथि में बदलाव किया है। विश्वविद्यालय के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार एमए अर्थशास्त्र, एप्लाइड साइकोलॉजी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग और एमबीए की प्रवेश परीक्षा 9 जून को होगी। वहीं बीएड सहित एमए मानव संसाधन प्रबंधन और एमए अरेबिक की प्रवेश परीक्षा 10 जून को होगी, जबकि एमए सोशल वर्क, एमए अंग्रेजी, इतिहास, एमसीए और बीएससी एरोनॉटिक्स की प्रवेश परीक्षा अब 11 जून 2024 को संचालित की जाएगी। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधाजनक और आवागमन तथा भीड़भाड़ को कम करने के लिए विशेष रेलगाड़ियां संचालित की हैं। ये रेलगाड़ियां आज से 31 मार्च तक चलेंगे। इनमें सहरसा आनंद विहार टर्मिनल, सहरसा विशेष रेलगाड़ी, नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा, नई दिल्ली आरक्षित स्पेशल रेलगाड़ी, नई दिल्ली वाराणसी, नई दिल्ली स्पेशल आरक्षित रेलगाड़ी, हजरत निजामुद्दीन उज्जैन, हजरत निजामुद्दीन सुपरफास्ट रेलगाड़ी, नई दिल्ली पटना जंक्शन स्पेशल रेलगाड़ी और नई दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली जंक्शन विशेष रेलगाड़ी शामिल हैं।
इफ वी टॉक अबाउट बेंगलुरु, वेल निखिल, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज और निमहांस बेंगलुरु हैज इनवाइटेड पब्लिक फॉर इट्स एग्जीबिशन ऑन इलेक्ट्रोकन्वर्सिव थेरेपी विच इज कॉमनली नोन एज शॉक ट्रीटमेंट यूज फॉर साइकैट्रिक इलनेसेज ऑफ सिवियर काइंड। The therapy called ECT in medical parlance was introduced in India in 1943 at Ranchi European Hospital. The exhibition on ECT in Nimhans, Bengaluru will help in addressing the stigma and remove misconceptions, demystifying ECT procedure and dispelling myths. Public can view the exhibition between 9 a.m. and 4:30 p.m. for the next 2 months. It's very important, especially to dispel all these myths regarding the medical field. In fact, our Indian film industry has a big role in these myths sometimes, because every patient who has a little bit of a memory of a shock treatment, isn't it? Which is obviously not very true. It's only of severe kind, it's a treatment for severe kind of psychiatric illnesses.
और अब चलते हैं मुंबई की ओर। तो मॉनसून आने में 3 महीने शेष हैं। बृहन मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मुंबई में 50% सड़कों का निर्माण कंक्रीट से करने की सख्त समय सीमा तय कर दी है। बीएमसी ने जनवरी 2023 में इस कार्य के लिए 5,500 करोड़ रुपए का कार्य आदेश जारी किया था। इसके तहत मुंबई के पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों तथा द्वीप शहर में 397 किलोमीटर लंबी सड़कें तैयार होंगी। बाद में नागरिक अधिकारियों द्वारा निविदा लागत को संशोधित कर 6,080 करोड़ रुपये कर दिया गया था। बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुंबई में 2000 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है और वर्तमान में लगभग 950 किलोमीटर सड़कें कंक्रीट की बनी हुई है, जबकि शेष सड़कें कोलतार और डामर से बनी हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को बीएमसी को बांद्रा पूर्व में फुट ओवरब्रिज या स्काईवॉक के निर्माण अपडेट पर हर 3 महीने में समय समय पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। बीएमसी का कहना है कि निर्माण कार्य 1 मार्च 2024 को शुरू हुआ था और उसका प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील अनिल सिंह ने कहा है कि वह देरी को उचित नहीं ठहरा रहे, लेकिन कहा कि प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक पहलुओं में लंबा समय लगा है। पिछले सप्ताह मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की उच्च न्यायालय की पीठ ने स्काईवॉक के पुनर्निर्माण की आवश्यकता और अनुपस्थिति पर दायर याचिका में अदालत को आश्वासन देने के बावजूद साल भर की देरी के लिए बीएमसी को फटकार लगाई थी। इसमें रेलवे स्टेशन से महाड़ा, छोर और बीकेसी की ओर जाने वाले पैदल यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बीएमसी के वकील ने अदालत को सूचित किया है कि नया स्काईवॉक अब से 15 महीनों में पूरा हो जाएगा, जिसमें मॉनसून के महीने भी शामिल हैं।
Moving on to Hyderabad, in Telangana, polling will be held today for the MLC by-election for Mehboob Nagar local body constituency. The by-poll was necessitated following the resignation of BRS MLC K. Narayan Reddy, who joined the Congress just ahead of the assembly polls and won from Kalvakurthi constituency. He resigned to the MLC post soon after his election as MLA. Both the ruling Congress and main opposition BRS have taken this election as a prestige issue and are going all out to win the seat. Counting of votes will take place on the 2nd of April. Elected representatives of local bodies, namely ZPTCs, MPTCs in Zilla and Mandal Parishads and councillors in municipalities are voters in this election. The opposition BRS has an absolute majority in local bodies, as the party almost made a clean sweep in local body elections held in 2019. Both BRS and Congress have held camps at other places like Goa, Kodaikanal and at a few places in Andhra Pradesh to prevent poaching by other parties.
और अब समय है कोलकाता से जुड़ी खबर को जानने का। तो कोलकाता में आज विश्व रंगमंच दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कोलकाता के गोरखी सदन में 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। वहीं कोलकाता में ही रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है और साथ में कई अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किए जाने की भी संभावना है। तो ये थी महानगरों से जुड़ी हुई खबरें। और सायरफ समय हो चला है महानगरों के मौसम को जानने का तो सबसे पहले दिल्ली की बात करें। दिल्ली में आज हल्के बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।
चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे निखिल। चेन्नई विल हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई टुडे। टेम्परेचर विल होवर बिटवीन 25 एंड 34 डिग्री सेल्सियस।
मुंबई की बात करें तो आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है।
अब आप कहेंगे सायरा तो मेरी नकल कर रही है, बेंगलुरु में भी आसमान साफ रहेगा। मिनिमम टेम्परेचर विल बी 21 वाइल मैक्सिमम विल बी 35। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टी क्लाउडी स्काई विद हेज। टेम्परेचर विल होवर बिटवीन 25 एंड 39 डिग्री सेल्सियस।
और बात करें हम कोलकाता की तो वहां भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। तो ये तो कर ली हमने मौसम की बात, अब समय हो चला है इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को जानने का। तो श्रोताओं आपको बता दें कि आज के दिन ही वर्ष 1930 में तुर्की में राजधानी अंगोरा को अंकारा और प्रमुख शहर कॉन्स्टेंटिन पोल को इंसाबुल का नाम दिया गया था।
ऑन दिस डे इन 1914 कोमागाता मारू सेल्ड फ्रॉम हांगकांग टू वैंकूवर विथ 351 सिख्स एंड 21 पंजाबी मुस्लिम्स अंडर द कैप्टनसी ऑफ सरदार गुरजीत सिंह एज पार्ट ऑफ द गदर मूवमेंट।
वर्ष 1965 में आज के दिन ही मार्टिन लूथर किंग ने अश्वेत अमरीकियों के लिए समान अधिकारों की मांग करते हुए उनकी समस्याओं की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से अलबामा की राजधानी मॉन्टगोमरी में एक विशाल मार्च निकाला था।
On this day in 1941, Netaji Subhash Chandra Bose reached Berlin after his secret underground journey from Calcutta.
वर्ष 2000 में आज का ही वो दिन था जब वेस्टइंडीज के कॉर्टनी वॉल्स ने टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
And on this day, Nikhil, in 1954, the first flight undertook its first VVIP commitment when it carried the first Prime Minister of India, that is Pandit Jawaharlal Nehru, from Palam to Tilpat Range and back to witness the firepower demo. It carried wide spectrum of VVIPs, including the President, the Prime Minister, renowned statesmen, generals, luminaries, and visiting foreign dignitaries.
वर्ष 2005 में आज के दिन ही इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में शक्तिशाली भूकंप से भारी तबाही हुई थी।
And on this day in 1994, the G15 summit opened with only 6 heads of government in New Delhi. Also on this day in 1997, final phase of repatriation of Chakma and other tribal refugees of the Chittagong Hill tracts from Tripura began.
वर्ष 2006 में आज के दिन ही अमेरिका ने पाकिस्तान के पेशावर में स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद किया था। वर्ष 2011 में आज के दिन ही देश में बाघों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी दर्ज की गई थी और उस समय की गणना में ये माना गया कि 1411 के मुकाबले बाघों की संख्या 1706 हो गई थी। और आज के दिन ही वर्ष 2015 में साइना नेहवाल दुनिया की नंबर एक बैडमिंटन खिलाड़ी बनी थी।
And Nikhil, if you don't have many more events, then probably, yes.
जी हाँ, आज के दिन यानी कि आज 28 मार्च को राष्ट्रीय ट्राइग्लिसराइड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य उचित स्तर पर जागरूकता फैलाना है। ये ट्राइग्लिसराइड खून में पाया जाने वाला एक प्रकार का फैट है जो संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा या फिर दोनों के मिश्रण और ग्लूकोज के एक प्रकार के कोलेस्ट्रॉल से मिलकर बनता है और ये शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखने में अपना अहम योगदान देते हैं। खासतौर पर ये मांस, डेयरी उत्पाद, खाना पकाने के तेल और वसा जैसी चीजों से प्राप्त होते हैं और लीवर के लिए भी इनका निर्माण किया जाता है। समय समय पर जांच कराना आवश्यक होता है इसके लिए, क्योंकि इनसे हृदय और रक्त धमनियों से जुड़ी बीमारियों का खतरा बना रहता है जिन्हें दूर करने के लिए जांच कराना बेहद जरूरी है।
एंड आई थिंक इट इज जस्ट मेकिंग वेरी स्मॉल चेंजेस इन आर लाइफस्टाइल दैट रियली प्लेज अ ह्यूज ह्यूज रोल इन प्रॉब्ली हैविंग अ हेल्दी बॉडी इज इट। अब जैसे मसलन आपने एसी की बात की तो जैसे ऑयल है दैट सच अ क्रूशियल थिंग इन कुकिंग फूड इन आर होम।
बिल्कुल।
बट जो रिसेंट मार्केट हैज बीन फ्लडेड विद रिफाइंड ऑयल्स, हर चीज रिफाइंड एंड प्रोसेस्ड इतनी हम लोग यूज करने लगे विच इज वेरी अनहेल्दी। तो जो हमारे हिंदुस्तान की जो कह सकते हैं ट्रेडिशनल तेल थे ना, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, कच्ची घानी सरसों का तेल या मूंगफली का तेल, जो भी आप करें बट इट शुड बी कोल्ड प्रेस्ड, दैट विल प्ले अ बिग रोल इन प्रॉब्ली हैविंग अ हेल्दी बॉडी।
बिल्कुल। और सायरा समय हो चला है अब जानी मानी हस्तियों को याद करने का। तो श्रोताओं आपको बता दें की आज ये पुण्यतिथि है गुरु अंगद देव जी की। वे सिखों के दूसरे गुरु थे और गुरु अंगद देव महाराज जी का सृजनात्मक व्यक्तित्व था। उनमें एक ऐसी आध्यात्मिक क्रियाशीलता थी जिससे पहले वो एक सच्चे सिख और बाद में एक महान गुरु बने। और गुरु अंगद देव जी लाहिड़ा जी भी कहलाते हैं। ये पंजाबी लिपि गुरुमुखी के जन्मदाता है जिसमें सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ के कई हिस्से लिखे गए हैं। ईश्वरीय गुणों से भरपूर महान और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे गुरु अंगद देव।
टुडे वी आर ऑल्सो रिमेम्बरिंग श्री नाथ त्रिपाठी और पॉपुलरली नोन एज SN त्रिपाठी ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी टुडे। कंपोजर, राइटर, एक्टर एंड डायरेक्टर, एंड ही वॉज अ वेरी मल्टीफैसेटेड पर्सन इन फैक्ट, बट मेनली एज अ कंपोजर हिज एक्टिव ईयर्स वर फ्रॉम 1930s टू द 80s। His debut film as an independent composer was Chandan, which came out in 1942. He was also the first composer to make use of the slogan Jai Hind in a song in films during the end of the British Raj. और वो गाना भी हम लोग थोड़ी देर में सुनेंगे, लेकिन कुछ और जानते हैं उनके बारे में। दैट ही गेन्ड पॉपुलैरिटी एज एन एक्टर व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग द रोल ऑफ हनुमान इन माइथोलॉजिकल एंड रिलीजियस फिल्म्स लाइक होमी वाडियाज श्री राम भक्त हनुमान इन 1948 एंड हनुमान पाताल विजय इन 1951।
श्रोताओं, आज ही पुण्यतिथि है काला वेंकट राव की।
यस, एंड एज आई मेंशन निखिल कि उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, बट उनका एक गाना भी सुन लेते हैं, जय हिंद वाला, जो हमने अपने लिसनर से प्रॉमिस किया था।
जी
हाँ।
और श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है काला वेंकट राव की। उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और वर्ष 1921 से आरंभ उनकी सक्रियता स्वाधीनता संग्राम में लगातार बनी रही। वे विभिन्न आंदोलनों में भाग लेने के कारण 8 बार जेल गए और फिर भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के कारण भी जेल गए और इसके बाद वे 1945 में ही जेल से बाहर आ सके। काला वेंकट राव 1937 में मद्रास विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे और 1946 में वे देश की संविधान परिषद के सदस्य बने थे। और आपको बता दें कि 1947 से 1959 तक वे पहले मद्रास और फिर आंध्र प्रदेश बन जाने के बाद वहां विभिन्न विभागों के मंत्री रहे और काला वेंकट राव को भूमि सुधार के विशेष ज्ञाता के रूप में भी जाना जाता है। श्रोताओं, आपको बता दें कि आज ही पुण्यतिथि है चौधरी बंसीलाल की। वे स्वतंत्रता सेनानी, वरिष्ठ नेता और आधुनिक हरियाणा के निर्माता माने जाते हैं। बंसीलाल का जन्म हरियाणा के भिवानी जिले में एक तत्कालीन लोहारू रियासत की संपन्न परिवार में हुआ था। भिवानी में वकालत करते हुए बंसीलाल पिछड़े हुए किसानों के नेता बने और 1960 में राज्यसभा के सदस्य बने। इस प्रकार उन्हें केंद्र स्तर के नेताओं से संपर्क में आने का अवसर मिला और अपनी सदस्यता के कार्यकाल को पूरा करने के बाद वे फिर से हरियाणा की राजनीति में वापस आए और फिर हरियाणा को विकसित बनाने के काम में जुट गए थे। और श्रोताओं, आज ही हम याद कर रहे हैं छत्ता सिंह को। आज उनकी पुण्यतिथि है। वे पहले विश्व युद्ध के दौरान भारतीय थलसेना की 9वीं भोपाल इन्फेंट्री में सिपाही थे। 13 जनवरी 1916 को इराक यानी कि उस वक्त मेसोपोटामिया की वादी में लड़ाई करते हुए उनकी अद्भुत वीरता के लिए उन्हें विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया था। खास बात यह थी कि लड़ाई के दौरान छत्ता सिंह अपने कमांडिंग ऑफिसर को बचाने के लिए बाहर तक निकल गए। उन्होंने अपने कमांडिंग ऑफिसर के घाव का उपचार किया और लगभग 5 घंटे तक, जब तक कि उनके लिए चलना सुरक्षित न हो गया, लगातार उनके साथ बने रहे। और इस बीच भारी गोलीबारी भी होती रही थी और फिर रात के अंधेरे में वो वापस आकर उनको मदद करे और फिर अपने ऑफिसर को वहां से सुरक्षित ले गए। छत्ता सिंह ने बाद में सार्जेंट पद की बराबरी का हवलदार का ओहदा हासिल किया था।
And Nikhil, if I tell you that today is the birthday of Stefanie Joanne Angelina Germanotta, kya pehchanenge us singer ko?
Thoda mushkil hai.
Right, because we nobody would be able to guess, because this is the real name of Lady Gaga.
Wow.
Yes, nobody would have guessed it, right? Well, we all know that she is a singer, songwriter and also an actress known for reinventing her image and showcasing versatility in the entertainment industry. She started performing as a teenager by singing at open mic nights and acting in school plays. And when we talk about Lady Gaga, we all know that her weird, we won't say weird, but it's very, you can say strange and very different looks and makeup and everything that she comes with that. And she probably surprises everyone with that. Her breakthrough came with the debut studio album, The Fame, and its singles, Just Dance and Poker Face. So Poker Face remains one of her famous songs. Let's listen to it.
I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me.
I love it.
Love game, intuition, play the cards of space to start. And after he's been hooked, I'll play the one that's on his heart.
श्रोताओं, आज ही हम याद कर रहे हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा को, आज उनकी भी पुण्यतिथि है। वे एक जाने माने भारतीय चित्रकार थे और आजादी के बाद की पीढ़ी के पहले ऐसे भारतीय चित्रकार थे जिन्हें पश्चिम में बहुत ज्यादा पहचान मिली थी। उन्हें उनके आविष्कारी मानव आकृतियों के लिए जाना जाता है। FN सूजा प्रोग्रेसिव आर्ट्स ऑफ ग्रुप बॉम्बे के संस्थापक सदस्य थे और इस संगठन का मकसद था भारतीय चित्रकारों को नवीन तरीकों के प्रयोग में प्रोत्साहन देना। और आपको बता दें कि उनके चित्रों की पहली प्रदर्शनी लंदन के बर्लिंगटन हाउस में वर्ष 1948 में लगी थी और 1949 में इंग्लैंड पहुंचकर उन्होंने द इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी आर्ट्स से अपनी प्रदर्शनी में अपने चित्रों को प्रदर्शित किया और फिर 1955 में कई ऐसे काम किए जिसकी वजह से उन्हें पूरे संसार में प्रसिद्धि मिली थी। और आपको बता के दिल्ली की नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, इंग्लैंड के बर्मिंगहम म्यूजियम ऑफ आर्ट्स, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम, जापान के ग्लैनबर्रा आर्ट म्यूजियम और इसराइल के हैफा म्यूजियम जैसी जगहों पर उनके चित्र संग्रह आज भी मौजूद हैं। और श्रोताओं, आज ही जयंती है गोरख प्रसाद की। वे गणितज्ञ, हिंदी कोश के संपादक, हिंदी में वैज्ञानिक साहित्य के प्रतिष्ठित और बहुप्रतिभा के धनी लेखक थे। उन्हें ज्योतिष और खगोल के प्रकांड विद्वान के रूप में जाना जाता है। गोरख प्रसाद का जीवन कई उपलब्धियों से सुसज्जित रहा। वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के परीक्षा मंत्री भी रहे और कई वर्षों तक इसको सेवाएं देते रहे थे।
Today is also the birthday of Munmun Sen, known for her works in Hindi, Bengali, Malayalam, Kannada, Telugu, Tamil and Marathi films. And very interesting trivia about Munmun Sen is that obviously we know that she is the daughter of Suchitra Sen, but apart from that, many film actresses, they retire after they get married and they have kids.
Right.
But Munmun Sen was one actress who started her career after being a mother. Can you imagine?
Right.
So that's very remarkable about her, you can say, filmy career. And we have a song that is filmed on her. Let's listen to it.
Mohabbat Inayat Karam Dekhte Hain Mohabbat Inayat Karam Dekhte Hain Kahan Hum Tumhare Sitam
श्रोताओं को बता दें कि मुनमुन सेन बॉलीवुड इंडस्ट्री की ऐसी जानी मानी हस्ती रही जो अभिनय में आने से पहले कई अन्य काम में अपने हाथ को आजमा चुकी, यानी अपनी किस्मत को आजमा चुकी थी। और 1980 के दशक में अपने दिलकश अंदाज से उन्होंने भारतीय सिनेमा प्रेमियों को बहुत ज्यादा प्रभावित किया था। और श्रोताओं, आपको बताया जाए कि आज ही जन्मदिन है अक्षय खन्ना का। वे जाने माने हिंदी फिल्म अभिनेता हैं और अपने करियर में सबसे बड़ी पहचान उन्हें जो मिली फिल्म बॉर्डर से, उसकी वजह से उन्हें एक अलग ही छाप के एक्टर के रूप में जाना गया। मल्टी स्टार इस फिल्म में अपने छोटे से रोल के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था क्योंकि उनकी एक्टिंग बहुत ज्यादा सराहनीय की थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे दमदार एक्टर के रूप में भी उन्हें जाना जाता है और लोगों ने यदि ताल फिल्म उनकी देखी है तो वाकई वो अपने आप में ऐसी आइकॉनिक फिल्म मानी जाती है जिसके सॉन्ग्स आज भी हमारी जबान पर रटे हुए हैं।
जी, underrated actor, I would say, but a very, very remarkable acting of Akshay Kumar has left, he has left his indelible mark on Indian cinema. And we all know that he is born to actor Vinod Khanna, but he has his own style of acting. Wo kisi ki na copy karte, unka ek mukhtalif andaaz hai, keh sakte hain. He is also a recipient of numerous accolades, including 2 Filmfare Awards. Let's listen one more song.
और तुझे अपना दिल देने का है मजा.
And with that, we'll call a wrap. DJ Nikhil और Saira को इजाजत.
नमस्कार.